एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
सभी श्रोताओं का स्वागत है।
आज हम एक ऐसे गहरे सवाल में उतर रहे हैं जो शायद हमेशा से इंसान पूछता आया है, ये दुनिया, ये सब कुछ आखिर बना किस चीज से है। हम बात करेंगे कण भौतिकी की, यानी कि पार्टिकल फिजिक्स की।
हाँ, और इस सफर में हमारे गाइड होंगे एक बहुत ही जाने माने भौतिक विज्ञानी, फ्रैंक क्लोज। हम उनके काम, उनके विचारों के जरिए इस बेहद दिलचस्प पर हाँ थोड़ा मुश्किल लगने वाले विषय को समझने की कोशिश करेंगे।
सुनने में शायद ही बहुत अकादमिक लगे, है ना?
बिल्कुल, पर यकीन मानिए इसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर भी पड़ता है।
सही बात है। मतलब जब हम पूछते हैं कि भाई ये विषय आज जरूरी क्यों है, तो जवाब सिर्फ लैब तक नहीं है।
हाँ।
आप सोचिए वर्ल्ड वाइड वेब, जिससे हम सब जुड़े हैं।
हाँ, जिसके बिना आज काम ही नहीं चलता।
एग्जैक्टली। या फिर अस्पतालों में जो पेट स्कैन होते हैं, इन सब का कनेक्शन कहीं ना कहीं इन्हीं छोटे मूलभूत कणों की समझ से जुड़ा है। तो ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमारी जिज्ञासा और हमारी टेक्नोलॉजी की कहानी भी है।
तो चलिए पहले मिलते हैं हमारे आज के गाइड से, फ्रैंक क्लोज। ये सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर एमेरिटस ही नहीं है, कण भौतिकी में इनका काम खास तौर पर क्वार्क और ग्लूऑन पर बहुत माना हुआ है।
लेकिन जो बात मुझे उनकी सबसे खास लगती है वो है उनका दोहरा टैलेंट। मतलब एक तरफ तो वो इतने गहरे रिसर्चर हैं,
और दूसरी तरफ वो विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने में कमाल के हैं। उन्होंने कई ऐसी किताबें लिखी हैं जो मुश्किल साइंस को भी एक कहानी की तरह बना देती हैं, पढ़ना आसान हो जाता है।
हाँ, और उनका नजरिया सिर्फ थियोरेटिकल तक सीमित नहीं है। वो सर्न, मतलब यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लैब।
हाँ, जिनेवा वाली।
वहां वो कम्युनिकेशन और पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड भी रहे हैं।
हाँ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ना सिर्फ साइंस जानते हैं, बल्कि ये भी समझते हैं कि ये बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स कैसे चलते हैं और इन्हें आम लोगों को कैसे समझाना है। ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है।
बिल्कुल, यानी हमारे पास एक ऐसी आवाज है जो कॉम्प्लेक्सिटी भी समझती है और उसे सिंप्लीफाई करना भी जानती है। तो देखते हैं फ्रैंक क्लोज का काम हमें इन कणों की रहस्यमय दुनिया के बारे में क्या बताता है।
क्लोज का काम असल में एक पुल बनाने जैसा है। एक तरफ तो वो कण भौतिकी की अजीब गणित वाली दुनिया है,
हाँ, जो हमें समझ नहीं आती आसानी से,
और दूसरी तरफ है हम सब की, मतलब आम इंसान की जिज्ञासा कि भाई ये सब है क्या। तो उनका मकसद है कि बिना उन मुश्किल समीकरणों में फंसे हम सब उन सब एटॉमिक कणों की दुनिया की एक झलक पा सकें।
सवाल तो बहुत सीधा सा है ना? आखिर सब कुछ बना किससे है? वो कौन से बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे ये पूरा यूनिवर्स बना है, और ये आपस में जुड़ते कैसे हैं, इनका बर्ताव कैसा है?
और ये सफर हमें रोजमर्रा की चीजों से शुरू करके ले जाता है उन गहराइयों तक, क्वांटम दुनिया तक, जहां हमारे नॉर्मल लॉजिक काम नहीं करते। क्लोज दिखाते हैं कि कैसे हजारों साल पहले यूनानियों के एटमोस, यानी जिसे काटा ना जा सके वाले आइडिया से,
हाँ, डेमोक्रेटस वगैरह,
वहीं से चलकर आज हम स्टैंडर्ड मॉडल तक पहुंचे हैं।
और यही स्टैंडर्ड मॉडल आज की कण भौतिकी की कह सकते हैं बैकबोन है। ये एक तरह का नक्शा है, एक फ्रेमवर्क है जो हमें सारे ज्ञात मूलभूत कणों जैसे क्वार्क्स, लेप्टॉन और उन्हें कंट्रोल करने वाले तीन बेसिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, इन सबको एक साथ समझने में मदद करता है।
तो क्लोज का काम इसी मॉडल और इसकी खोजों को हमारे लिए आसान बनाता है। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं इसमें।
ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उस प्रोसेस से जिसे क्लोज बड़े अच्छे से कहते हैं, ब्रह्मांडीय प्याज को छीलना, पीलिंग द कॉस्मिक अनियन। अच्छी उपमा है ना?
हाँ, कमाल की है। जैसे प्याज की परतें हटाओ तो और परतें निकलती हैं।
बिल्कुल, वैसे ही पदार्थ को समझने की हमारी कोशिशों ने नई नई सच्चाइयां सामने लाई हैं। कहानी शुरू होती है पुराने ग्रीस से, जहां डेमोक्रेटस जैसे लोगों ने सोचा कि भाई किसी चीज को काटते जाओ, अंत में एक कण मिलेगा जिसे और नहीं काट सकते, एटमॉस, अविभाज्य।
सदियों तक ये बस एक फिलोसॉफिकल आइडिया था, फिर 19वीं सदी में आए जॉन डाल्टन, उन्होंने इसे एक साइंटिफिक थ्योरी का रूप दिया। लगा कि बस एटम ही सबसे छोटा है।
पर पिक्चर अभी बाकी थी। 1897 में जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज लिया। अरे, पता चला कि एटम तो अविभाज्य है ही नहीं, उसके अंदर भी कुछ है।
और फिर रदरफोर्ड का वो फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उसने दिखाया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा तो भाई खाली है और सारा पॉजिटिव चार्ज और वजन एक बहुत ही छोटी सी जगह न्यूक्लियस में है।
बाद में पता चला न्यूक्लियस में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कुछ टाइम के लिए लगा हां अब मिल गए असली बिल्डिंग ब्लॉक्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनसे ही सब बना है।
लेकिन वो ब्रह्मांडीय प्याज, उसकी परतें अभी और थीं।
हाँ बिल्कुल, 20वीं सदी के बीच में जैसे जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स और पावरफुल हुए, एक अजीब सी सिचुएशन आ गई। साइंटिस्ट्स को सैकड़ों नए नए पार्टिकल मिलने लगे,
मतलब इतने सारे के मजाक में उसे पार्टिकल जू कहा जाने लगा।
हाँ अब साइंस तो खोजती है सिंप्लिसिटी, है ना। यहाँ तो मामला और उलझ गया था, इतने सारे कण कहां से आ गए।
यहीं पर आता है वो टर्निंग पॉइंट। 1964 में मरे गेलमन और जॉर्ज ज्विग ने लगभग एक ही टाइम पर ये आइडिया दिया कि भाई सुनो, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और ये सैकड़ों दूसरे कण, ये भी फंडामेंटल नहीं है।
अच्छा
हाँ, ये और भी छोटे कणों से बने हैं। और गेलमैन ने उन्हें एक बड़ा मजेदार नाम दिया, क्वार्क। जेम्स जॉयस की एक नॉवल से उठाया था ये शब्द।
क्या बात है, क्वार्क। तो ये क्या बलाएं हैं? पता चला कि प्रोटॉन बना है दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से, और न्यूट्रॉन वो एक अप और दो डाउन क्वार्क से।
बाद में और भी क्वार्क खोजे गए, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम, टॉप, कुल मिलाकर छह तरह के क्वार्क। और कमाल की बात ये कि इन छह क्वार्क ने उस पूरे पार्टिकल जू को एकदम ऑर्गेनाइज कर दिया,
जैसे मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल ने एलिमेंट्स को किया था।
बिल्कुल, पदार्थ की एक और उससे भी गहरी परत खुल गई।
तो अब हमारे पास पदार्थ के मतलब मैटर के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, छह तरह के क्वार्क्स और छह तरह के लेप्टॉन्स। लेप्टॉन में इलेक्ट्रॉन और उसके जैसे और कण आते हैं, न्यूट्रिनो वगैरह। 12 हो गए ये।
ठीक है, पर ये कण आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, मतलब जुड़ते कैसे हैं, एक दूसरे पर असर कैसे डालते हैं?
यहीं पर आते हैं फंडामेंटल फोर्सेस और उनके मैसेंजर पार्टिकल्स, जिन्हें कहते हैं बोसॉन। आज की फिजिक्स का नजरिया बड़ा इंटरेस्टिंग है इसके बारे में। वो कहती है कि फोर्स कोई जादू नहीं है, कोई अनदेखा खिंचाव नहीं है, बल्कि ये पार्टिकल्स का एक्सचेंज है।
अच्छा, कैसे?
जैसे मान लीजिए दो लोग आइस स्केटिंग कर रहे हैं और एक दूसरे को गेंद फेंके, तो गेंद फेंकने और पकड़ने से वो एक दूसरे से दूर हटेंगे, है ना, एक फोर्स महसूस होगा।
हाँ हाँ,
बस वैसे ही फंडामेंटल पार्टिकल्स बोसॉन नाम के कणों को एक्सचेंज करके एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। स्टैंडर्ड मॉडल ऐसे तीन फोर्सेस की बात करता है।
पहला तो सबसे जाना पहचाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसका मैसेंजर पार्टिकल है फोटोन, यानी लाइट का कण। यही फोर्स बिजली, मैग्नेटिज्म, लाइट और यहां तक कि केमिस्ट्री सब इसी पर बेस्ड है। हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें इसी फोर्स से बंधी हैं।
दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसका मैसेंजर है ग्लूऑन। जैसा नाम है वैसा ही काम, बहुत ताकतवर है ये, लेकिन इसके रेंज बहुत कम है, सिर्फ एटम के न्यूक्लियस के अंदर। यही फोर्स क्वार्कों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर चिपकाए रखता है,
और यही प्रोटॉनों को न्यूक्लियस में एक साथ रखता है, जबकि उन सब पर तो पॉजिटिव चार्ज है।
एग्जैक्टली, वरना तो उन्हें एक दूसरे को रिपेल करके बिखर जाना चाहिए था। और तीसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसके मैसेंजर है W और Z बोसॉन्स। ये फोर्स कुछ तरह की रेडियो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। और सबसे जरूरी बात, सूरज और बाकी तारे जो एनर्जी पैदा करते हैं, वो प्रोसेस इसी वीक फोर्स से शुरू होता है, तो हमारे वजूद के लिए ये भी जरूरी है।
एक बात यहाँ नोट करने वाली है कि चौथा जो फोर्स हम जानते हैं, ग्रेविटी,
हाँ, गुरुत्वाकर्षण,
वो इस स्टैंडर्ड मॉडल में फिट नहीं बैठता।
उसे क्वांटम लेवल पर इन बाकी फोर्सेस से कैसे जोड़ा जाए, ये आज भी फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है।
खैर, तो इन तीन फोर्सेस और वो 12 कण, 6 क्वार्क, 6 लेप्टॉन, इनको मिलाकर जो पूरा ढांचा बनता है,
वही है स्टैंडर्ड मॉडल। आप इसे कह सकती हैं ब्रह्मांड का ग्रामर या फंडामेंटल पार्टिकल्स की पीरियोडिक टेबल।
हाँ, ये इन सभी कणों और तीन फोर्सेस को बड़े सलीके से ऑर्गेनाइज करता है। पार्टिकल्स को तीन जेनरेशंस में भी बांटा गया है, हर जेनरेशन पिछली से भारी होती है, और इस मॉडल की भविष्यवाणियां इतनी ज्यादा सटीक साबित हुई हैं कि ये साइंस के इतिहास की सबसे कामयाब और सबसे ज्यादा टेस्ट की गई थ्योरीज में से एक है।
पर इस शानदार मॉडल में एक बड़ी दिक्कत थी, इसके जो बेसिक समीकरण थे वो अपने सबसे सुंदर सिमेट्रिकल रूप में ये कहते थे कि भाई सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स का कोई मास, कोई द्रव्यमान होना ही नहीं चाहिए, फोटोन की तरह।
लेकिन हम तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, क्वार्क का होता है।
बिल्कुल, तो ये मास आता कहां से है? ये एक बहुत बड़ी पहेली बन गई थी।
और इस गुत्थी को सुलझाने का आइडिया भी लगभग उसी टाइम 1964 में ही रॉबर्ट ब्राउट, फ्रांस्वा एंग्लर्ट और पीटर हिग्स ने दिया था। उन्होंने कहा कि सोचो, पूरा स्पेस, पूरा ब्रह्मांड एक अनदेखे एनर्जी फील्ड से भरा हुआ है, हर जगह।
एक इनविजिबल फील्ड जिसे अब हिग्स फील्ड कहते हैं। कमाल का आइडिया है ना, एक अनदेखा फील्ड हर जगह।
बिल्कुल, और कण जब इस फील्ड से गुजरते हैं तो वो इससे इंटरैक्ट करते हैं और इसी इंटरैक्शन से उन्हें मास मिलता है।
क्लोज कि वो उपमा यहां बहुत काम आती है। सोचिए, एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी है, वो एक भीड़ भरे कमरे में घुसती है।
हाँ।
जैसे ही वो आगे बढ़ती है, लोग उसके आसपास जमा हो जाते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। ये है फील्ड का असर। इस भीड़ की वजह से सेलिब्रिटी का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये जो मुश्किल है, ये जो रेजिस्टेंस है, यही मास जैसा है।
और जो कण इस फील्ड से बिल्कुल इंटरैक्ट नहीं करता, जैसे फोटोन, वो बिना किसी रुकावट के तेजी से निकल जाता है, इसीलिए उसका मास जीरो है।
वाह, और अगर इस हिग्स फील्ड में कोई लहर उठे, कोई एक्साइटेशन हो, वही है हिग्स बोसॉन पार्टिकल।
इसे दशकों तक खोजा गया और आखिरकार 2012 में सर्न के लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर LHC में वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढ निकाला। ये स्टैंडर्ड मॉडल की पहेली का वो आखिरी टुकड़ा था और साइंस के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी।
हाँ, पीटर हिग्स और फ्रांस्वा एंगलार्ट को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला बाद में।
तो ये थी एक तरह से कण भौतिकी की कहानी की झलक। फ्रैंक क्लोज के नजरिए से अब जरा उन बड़े आइडियाज पर बात करते हैं जो इस सबसे निकल कर आते हैं।
हाँ बिल्कुल, मेरे लिए सबसे पहली और शायद सबसे हैरान करने वाली बात है सिंप्लिसिटी और यूनिटी। आप सोचिए, हमारे चारों तरफ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इतनी वैरायटी है, तारे, ग्रह, पेड़, इंसान,
हजारों लाखों चीजें।
हाँ, लेकिन ये सब कुछ फंडामेंटली सिर्फ मुट्ठी भर कणों, 12 और कुछ गिने चुने नियमों, 3 बल प्लस हिग्स के खेल से बना है। प्रकृति कितनी एफिशिएंट है ना?
बिल्कुल। दूसरा बड़ा आइडिया है सिमेट्री का, समरूपता। फिजिक्स में ब्यूटी सिर्फ देखने वाली नहीं होती, मैथ वाली भी होती है, और ये मैथमेटिकल सिमेट्रीज ही तय करती हैं कि फोर्सेस कैसे काम करेंगे, कौन से पार्टिकल्स होने चाहिए।
और मजे की बात यह है कि कभी कभी सिमेट्री का टूटना भी जरूरी होता है, जैसे वो हिग्स मैकेनिज्म है। वहां एक सिमेट्री टूटती है तभी कणों को मास मिलता है। ये मैथ्स की खूबसूरती और असलियत के बीच एक गहरा कनेक्शन दिखाता है।
तीसरा अहम पॉइंट है थ्योरी और एक्सपेरिमेंट का साथ साथ चलना। ये कोई हवा हवाई चीज नहीं है, ये थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के बीच लगातार चलने वाला एक डायलॉग है। थ्योरी प्रेडिक्ट करती है, जैसे हिग्स बोसॉन को किया,
फिर सर्न जैसे विशाल एक्सपेरिमेंट उन प्रिडिक्शंस को टेस्ट करते हैं। कभी वो सही साबित होते हैं, कभी थ्योरी को बदलाना पड़ता है। इसी लेन देन से हमारी समझ आगे बढ़ती है। ये सिर्फ विचारों का खेल नहीं है।
और चौथा, जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, वो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सर्न जैसे एक्सपेरिमेंट कोई एक देश या एक इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। इनमें दुनिया भर के हजारों साइंटिस्ट और इंजीनियर साथ काम करते हैं,
अपनी पॉलिटिक्स, अपनी नेशनैलिटी सब भूलकर।
हाँ, ये दिखाता है कि जब इंसानियत एक कॉमन गोल के लिए साथ आती है तो क्या नहीं कर सकती। ये ग्लोबल चैलेंजेस से निपटने का भी एक मॉडल है।
फ्रैंक क्लोज अपने लिखने में कुछ बहुत यादगार बातें कहते हैं। एक तो वो JBS हॉल्डन का कोट अक्सर यूज करते हैं, ब्रह्मांड न केवल हमारी कल्पना से ज्यादा विचित्र है, बल्कि उससे भी ज्यादा विचित्र है जितनी हम कल्पना कर सकते हैं।
हाँ, ये क्वांटम दुनिया पर एकदम फिट बैठता है, जहां कण एक ही टाइम पर कई जगह हो सकते हैं या दीवार के आर पार निकल सकते हैं। हमारा कॉमन सेंस तो फेल हो जाता है वहां।
और वो लाइन, हम सब तारों की धूल से बने हैं, वी आर ऑल मेड ऑफ स्टार स्टफ, ये सिर्फ पोएटिक नहीं है, ये सच है। हमारे शरीर में जो कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन जैसे भारी एलिमेंट्स हैं,
वो सब किसी तारे के अंदर बने थे।
हाँ, अरबों साल पहले किसी तारे के कोर में या सुपरनोवा एक्सप्लोजन में बने थे। पार्टिकल फिजिक्स हमें सीधे यूनिवर्स की इस बड़ी कहानी से जोड़ देती है। ये सोचना ही कितना विस्मयकारी है।
और क्लोज पार्टिकल्स को टकराने के प्रोसेस को कहते हैं कॉस्मिक आर्कियोलॉजी, ब्रह्मांडीय पुरातत्व।
अच्छा।
हाँ, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट जमीन खोदकर पुराना इतिहास निकालते हैं, वैसे ही पार्टिकल फिजिसिस्ट कणों को जोर से टकराकर बिग बैंग के फौरन बाद वाले हालात बनाते हैं, ताकि उन शुरुआती कणों और नियमों को समझ सकें। ये तोड़फोड़ नहीं, ये खोज है।
और मास यानी द्रव्यमान के बारे में उनका नजरिया कि वो कोई बोझ नहीं है जो कण उठाते हैं, बल्कि हिग्स फील्ड में चलते हुए महसूस होने वाला एक खिंचाव, एक ड्रैग है। ये तो मास जैसी बेसिक चीज को देखने का तरीका ही बदल देता है।
तो सवाल उठता है कि भाई ये सब जानने से हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? क्या ये सिर्फ साइंटिस्ट की जिज्ञासा की बात है?
बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपने दिया था, वर्ल्ड वाइड वेब,
WWW।
हाँ, टिम बर्नर्स ली ने इसे 1989 में सर्न में ही बनाया था।
क्यों?
ताकि दुनिया भर में फैले हजारों साइंटिस्ट अपना डेटा आसानी से शेयर कर सकें।
और आज देखिए, क्या हम अपनी जिंदगी इसके बिना सोच सकते हैं?
बिल्कुल नहीं। कहां पार्टिकल फिजिक्स की जरूरत और कहां आज पूरी दुनिया की जरूरत बन गया।
मेडिकल फील्ड में भी डायरेक्ट असर है। पेट स्कैन्स जो होते हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, उसमें एंटी मैटर यूज होता है, पॉजिट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। इससे बॉडी के अंदर की कमाल की इमेजेस मिलती हैं।
और कैंसर के इलाज में हैड्रॉन थेरेपी, वो सीधे सीधा पार्टिकल एक्सेलरेटर की टेक्नोलॉजी यूज करती है ट्यूमर को टारगेट करने के लिए।
और हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, कंप्यूटर, स्मार्टफोन में जो सेमीकंडक्टर लगे हैं, वो क्वांटम फिजिक्स के उसूलों पर ही काम करते हैं।
LHC जैसे एक्सपेरिमेंट से इतना ज्यादा डेटा निकलता है कि उसे संभालने के लिए ग्रिड कंप्यूटिंग डेवलप हुई,
जिसने आज की क्लाउड कंप्यूटिंग की नींव रखी। मतलब हम अनजाने में ही सही रोज पार्टिकल फिजिक्स के दिए हुए फलों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये सब यही दिखाता है कि फंडामेंटल साइंस में, बेसिक रिसर्च में पैसा लगाना, मेहनत करना कितना जरूरी है, भले ही उसका तुरंत कोई एप्लीकेशन ना दिखे।
हाँ, बड़ी खोजें अक्सर ऐसी ही जिज्ञासा से शुरू होती हैं जिनका कोई प्रैक्टिकल मकसद नहीं होता शुरू में।
तो इस पूरी चर्चा से क्या खास बातें हम लेकर जा सकते हैं? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि रियलिटी, हकीकत, हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है, ज्यादा रहस्यमयी है और साथ ही फंडामेंटली ज्यादा सिंपल भी है।
हाँ, वो कुछ गिने चुने कण और नियम।
बिल्कुल, हमें अपना दिमाग खुला रखना होगा, जो चीजें हमारे कॉमन सेंस के खिलाफ जाती हैं, उन्हें भी एक्सेप्ट करना होगा।
और मेरे लिए ये टेक अवे है कि साइंस एक सफर है, मंजिल नहीं। स्टैंडर्ड मॉडल कमाल का है, पर ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी भी बड़े सवाल हैं। डार्क मैटर क्या है, डार्क एनर्जी क्यों है, ग्रेविटी कैसे जुड़ेगी बाकी फोर्सेस से,
यानी जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।
हाँ,
और ये हमें याद दिलाता है कि मिलकर काम करने में कितनी ताकत है, जैसा सर्न दिखाता है।
बिल्कुल,
फ्रैंक क्लोज का काम हमें न सिर्फ यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स दिखाता है, बल्कि ये भी कि साइंस काम कैसे करती है। जिज्ञासा, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, कोऑपरेशन, और हाँ, कभी कभी थोड़ी किस्मत भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कौन हैं और इस विशाल कॉस्मोस में हमारी जगह क्या है।
तो अगली बार जब आप रात में आसमान के तारे देखें या अपने फोन पर कुछ सर्च करें, तो एक पल के लिए उन नन्हे नन्हे कणों और उन अनदेखे बलों के बारे में जरूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे ये सब चला रहे हैं। क्या पता ब्रह्मांड के रहस्य हमारी कल्पना से भी ज्यादा गहरे और दिलचस्प हों।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।